21 मार्च गुरुवार दिनभर में स्वागत है आपका। मैं हूं फैसल मोहम्मद अली। समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने पुलवामा हमले को बताया वोट बटोरने की साजिश का नतीजा।
तो ये साजिश थी, ये अभी मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन जब सरकार बदलेगी, जब इसकी जांच होगी, तो आप देखना कि बड़े बड़े लोग इसमें फंसेंगे।
बीजेपी ने इसे तुष्टिकरण की इंतहा बताया, कहा रामगोपाल मांगे माफी। सुनवाएंगे उर्दू नज्मों और सूफी गीतों में होली के रंग पर एक खास रिपोर्ट।
जब फागुन रंग झुमकते हों तब देख बहारें होली की, और डफ के शोर खटकते हों तब देख बहारें होली की।
साथ होंगी आपकी चिट्ठियां भी, लेकिन सबसे पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि दक्षिणी अफ्रीका में आए तूफान से करीब 3,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका प्रभावित हुआ है। सबसे ज़्यादा बर्बादी मोजाम्बिक में हुई है, जहां विश्व खाद्य कार्यक्रम के मुताबिक 4,00,000 लोगों को राहत सामग्री की ज़रूरत है। इडाई तूफान के आने के एक सप्ताह बाद भी करीब 1,00,000 लोग ऐसे हैं जिन तक किसी भी तरह की मदद नहीं पहुँच सकी है। विश्व खाद्य कार्यक्रम का कहना है कि जिम्बाब्वे के 2,00,000 लोगों को अगले 3 महीनों तक खाद्य मदद की जाएगी। यहां के सबसे ज़्यादा प्रभावित ज़िले चिमानिमामी में करीब 90% हिस्सा बर्बाद हो गया है। यहां अभी भी भारी बारिश हो रही है। मलावी के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश हो रही है। ये पानी मोजाम्बिक के निचले इलाकों में पहुँच रहा है, जहाँ हालात और ख़राब होने की आशंका जाहिर की गई है। मोजाम्बिक में ऑक्सफैम के कार्यक्रम निदेशक रोटाफिना डोंको ने बताया,
थिंग्स कुड इवन गेट वर्स इफ द रेन डज नॉट स्टॉप।
अगर ये बारिश नहीं रुकी तो हालात और भी खराब हो सकते हैं, क्योंकि मिट्टी पहले से ही दलदली है और नदियां उफान पर हैं। जिम्बाब्वे और मालावी में अभी भी बारिश हो रही है। ये पानी मोजाम्बिक पहुंचेगा, जहां कुछ बांधों को खोलने की ज़रूरत पड़ेगी और इसके बहुत से गंभीर परिणाम हो सकते हैं, खासकर निचले इलाकों में रह रहे लोगों के लिए। ब्रिटानी प्रधानमंत्री टेरेसा मे ब्रसेल्स पहुंची हैं, जहां वो यूरोपीय नेताओं से ब्रेग्जिट के मुद्दे पर लंदन में जारी राजनीतिक गतिरोध को तोड़ने के लिए अतिरिक्त समय मांगेंगी। ब्रसेल्स में यूरोपीय नेताओं का सम्मेलन अब से कुछ देर में शुरू होने जा रहा है। इसी बीच जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा है कि अगर ब्रिटानी सांसद ब्रेग्जिट समझौते की मंजूरी दे देते हैं तो यूरोपीय नेता ये मान लेंगे। ब्रिटानी संसद ने 2 बार समझौते को नकार दिया है और इस पर अगले सप्ताह फिर वोटिंग होनी है। वहीं ब्रसेल्स पहुंचे आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वराडकर ने कहा है कि यूरोपीय संघ को ब्रिटेन के अलग होने की समय सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा,
I think there is an openness, to an extension, across the board.
मैं समझता हूं कि समय सीमा बढ़ाने को लेकर स्पष्ट सहमति है, क्योंकि सब चाहते हैं कि बिना समझौते के ब्रेग्जिट ना हो, लेकिन हम ऐसी स्थिति में भी नहीं रह सकते जब हम हर समय धार पर हों और हर महीने 2 महीने में समय सीमा को बढ़ाते रहें। ब्रेग्जिट कभी आसान और सरल नहीं रहने वाला था, और इसके लिए ब्रिटेन को कुछ बहुत मुश्किल फैसले लेने ही होंगे। अब वो फैसले लेने का वक्त आ गया है। वेनेजुएला के विपक्षी नेता ख्वान गोइदो ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ रोबर्टो मरेरो की तुरंत रिहाई की मांग की है। मरेरो को बीती रात खुफिया एजेंसी के एजेंटों ने हिरासत में ले लिया था। गोइदो के मुताबिक विपक्ष के उपनेता सर्गियो वर्गारा के घर पर भी छापेमारी की गई। कुछ देर हिरासत में रहने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। गोइदो ने आरोप लगाया है कि एजेंटों ने मरेरो के घर पर ग्रेनेड और राइफलें रखवाईं। अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी मरेरो की रिहाई की मांग करते हुए कहा है कि अमरीका उनकी गिरफ्तारी में शामिल लोगों को जिम्मेदार ठहराएगा। बुरुंडी में अपनी स्कूली किताब पर बनी राष्ट्रपति की तस्वीर पर लिखावट करने के आरोप में गिरफ्तार की गई 3 किशोरियों को जेल भेज दिया गया है। उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। जजों का कहना है कि उन पर राष्ट्र के प्रमुख के अपमान के लिए मुकदमा चलना चाहिए। अगर दोष साबित हुआ तो 15 से 70 वर्ष के बीच की इन किशोरियों को 5 साल तक की जेल भी हो सकती है। मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि बच्चों पर हानि रहित लिखावट के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है। बुरुंडी में साल 2016 में भी कई छात्रों को ऐसा करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी रेडियो की दूसरी सभा दिनभर, फैसल मोहम्मद अली से। اس وقت جب ہم آپ سے بات کرنا شروع کر رہے ہیں اسی وقت بھارتیہ جنتا پارٹی نے لوک سبھا چناؤ کے لیے اپنے امیدواروں کی لسٹ جاری کر دی ہے. 100 سے ادھک لوگوں کی لسٹ جاری کی گئی ہے. اس سمے بھارتیہ جنتا پارٹی کی ایک پریس کانفرنس جاری ہے دلی کے مکھیالے میں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں ہمارے سہیوگی اقبال احمد. اقبال صاحب یہ بتائیں کہ پہلی نظر میں ابھی تو شروع ہی ہوئی ہے پریس کانفرنس, کیا کیا آپ کے سامنے باتیں ہیں؟
ایسا کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 200 یا شاید اس سے زیادہ بھی سیٹوں کی گھوشنا بی جے پی کر دے گی, لیکن فی الحال جیسے جیسے نام آ رہے ہیں, سب سے بڑا نام میں کہہ رہا ہوں سب سے بڑا نام گجرات کے گاندھی نگر سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے ادھیکش امت شاہ چناؤ لڑیں گے,
جبکہ ابھی کچھ دنوں یہ خبر آ رہی تھی.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے سب سے ورشٹھ نیتا لال کرشن آڈوانی جو ابھی تک آج تک موجودہ سانسد ہیں گاندھی نگر سے, اب ان کے بارے میں ظاہر ہے ابھی فیصلہ میں اس وقت اسٹوڈیو میں بیٹھ کے نہیں بتا سکتا ہوں کہ کیا وہ چناؤ لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے, کسی دوسری جگہ سے لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے. پارٹی یہ کہتی رہی تھی کہ مرلی منوہر جوشی اور لال کرشن آڈوانی جو ہے چونکہ یہ اتنے ورشٹھ ہیں کہ ان پر ہی چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ کیا فیصلہ لیں گے. ابھی اس وقت میں اس استھتی میں نہیں ہوں کہ یہ بتاؤں کہ لال کرشن آڈوانی کا کیا ہوگا,
انہوں لیکن نے
جو
میں فیصلہ کیا ہے
دعویٰ کر سکتا ہوں اور جو یہ لسٹ جاری ہے جے پی نڈا آپ کے سامنے جاری کر رہے ہیں کہ گاندھی نگر سے امت شاہ چناؤ لڑیں گے. ابھی امت شاہ راجیہ سبھا سانسد ہیں. اس کے علاوہ پردھان منتری نریندر مودی وارانسی سے ہی چناؤ لڑیں گے. اس پر بھی کئی طرح کی باتیں کہیں جا رہی تھی,
پہلے کہا جا رہا تھا کہ اڈیشہ
جائیں گے یا کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ بہار کی کسی سیٹ سے لڑیں گے, لیکن فی الحال اس کی گھوشنا ہو گئی ہے کہ پردھان منتری نریندر مودی
وارانسی میں
سے ہی چناؤ لڑیں گے. گرہ منتری راج ناتھ سنگھ بی جے پی کے بہت ہی ورشٹھ نیتا, وہ بھی لکھنؤ سے ہی چناؤ لڑیں گے. ودیش راج منتری وی کے سنگھ جو غازی آباد کے موجودہ سانسد ہیں وہ بھی غازی آباد سے ہی چناؤ لڑیں گے. ہما مالینی جو متھرا سے اس وقت سانسد ہیں وہ بھی متھرا سے ہی چناؤ لڑیں گی. اب تک جو ہم لوگوں کے پاس خبریں آئی ہیں اور یہ جو لسٹ
لائیو یہ دکھا رہے ہیں
شاید وہ 182 کی بات کی لسٹ ہے, لیکن جو سب سے بڑی خبر تھی وہ یہی تھی کہ امت شاہ گاندھی نگر سے چناؤ لڑیں گے. اور اس وقت یہ بتا پانا بالکل مشکل ہے کہ لال کرشن آڈوانی کا کیا ہوا اور مرلی منوہر جوشی کا کیا ہوا, کیا وہ کسی دوسری سیٹ سے چناؤ لڑیں گے, وہ موجودہ کانپور سانسد ہیں یا انہیں بھی ٹکٹ نہیں دیا گیا ہے یا انہوں نے ہی خود منع کر دیا. نوئیڈا سے جو سنسکرتی منتری ہیں مہیش شرما وہ نوئیڈا سے ہی چناؤ لڑیں گے.
ابھی تک کچھ ایسا سامنے آیا کہ کوئی ایسے پرومیننٹ نیم ہے جو پرتشٹھت نیتا بڑے نیتا جن کی ٹکٹ کٹ گئی ہو یا ابھی تک
وہ ظاہر ہے وہ سب سے بڑا مانوانی کا ہی ہو سکتا ہے اگر وہ ہم
لیکن 186 میں کیسے کہا جائے
میں آ جائے کہ وہ کسی اور جگہ سے لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے تو ہی کہا جا سکتا ہے. ایک جو بڑا نام اس طرح سے تو نہیں ہے لیکن وہ پہلے پورو منتری رہ چکے ہیں بہار کے شہنواز حسین جو بھاگلپور سے اب تک چناؤ لڑتے رہے تھے, حالانکہ اس وقت وہ موجودہ سانسد نہیں ہے لیکن پچھلی بار انہوں نے بھاگلپور سے چناؤ لڑا تھا. ابھی جو لسٹ آئی تھی اس سے پہلے بہار میں جو بھاگلپور کی سیٹ ہے وہ جنتا دل یو یعنی نتیش کمار کی پارٹی کو چلی گئی تھی. اب یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید شہنواز کو بی جے پی کہیں اور شفٹ کرے گی, لیکن اب اگر یہ لسٹ جاری ہو جاتی ہے اس میں بہار کے بی جے پی 17 سیٹوں پر چناؤ لڑے گی. اگر وہ
17 سیٹوں ہو جاتی ہیں ڈکلیئر تو ظاہر ہے کہ کیا یہ صاف ہو جائے گا
شہنواز حسین کی ٹکٹ کٹی ہے یا انہیں کہیں اور شفٹ کیا گیا ہے. اسی طرح جو موجودہ کیندریہ منتری ہیں
روی شنکر پرساد
کے بارے میں کہا جا رہا کہ وہ پٹنہ صاحب سے چناؤ لڑیں گے, لیکن ابھی تک
وہ نام نہیں آیا. یہ
امیٹھی سے ایک نام آ چکا ہے اسمرتی ایرانی, وہ امیٹھی سے چناؤ لڑیں گی, یہ ابھی فیصلہ ہو چکا ہے.
تو امیٹھی سے تو انہوں نے پچھلا چناؤ بھی لڑا تھا تو ایک طرح سے وہ اپنا وہاں بنی ہوئی ہیں, اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوئی ہے.
گڈکری جو ہے نتن گڈکری وہ پورو ادھیکش ہیں, ورشٹھ نیتا ہیں, بی جے پی کے کیندریہ منتری ہیں,
کافی مکھر نیتا بھی,
وہ ناگپور سے
چناؤ لڑیں گے.
تو یہ سشما سوراج کے بارے میں کوئی جانکاری ابھی تک نہیں ہے کہ کیا وہ ودیشا سے لڑیں گی کہ نہیں لڑیں گی.
لیکن سشما سوراج کے حوالے سے کچھ خبریں آئی تھیں کہ انہوں نے خود سے کہا
جی
ہے کہ چناؤ
لیکن
نہیں
وہ بہت جس کو کہتے ہیں اس کی پشتی نہیں کی جا سکتی, جس اما بھارتی نے بھی کہہ دیا تھا کہ میں چناؤ نہیں لڑوں گی. تو ابھی اما بھارتی کی سیٹ پر بھی سب کی نگاہیں ہیں کہ کیا وہ چناؤ لڑیں گی یا نہیں لڑیں گی. جی
بی جے پی کے لسٹ کے بارے میں آپ کو یا تو ہماری ویب سائٹ پر آ کے آگے دیکھیں bbchindi.com पे या फिर रेडियो की जो अगली सभा होगी उसमें हम विस्तार से बताएंगे इसके बारे में। फिलहाल चलते हैं एक बयान के बारे में जो कि सपा नेता रामगोपाल यादव ने दिया है, वो जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू के बाद समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने भी पुलवामा में 14 फरवरी के हुए हमले पर सवाल उठाया है। भारतीय कश्मीर के श्रीनगर के पास मौजूद पुलवामा में हुए हमले में CRPF के 40 से अधिक सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई थी। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और बढ़ गया था और दोनों ने कई तरह के दावे किए थे। इकबाल साहब, ये बताएं कि क्या कहा रामगोपाल यादव ने जिसको लेकर फिर से विवाद।
देखिए, उन्होंने कहा कि ये एक साजिश है, जवानों को मार दिया गया और अगर केंद्र में सरकार बदल जाती है, यानी मौजूदा जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसकी जगह अगर कोई दूसरी सरकार होती है जिसमें समाजवादी पार्टी भी अगर शामिल होती है तो वो इसकी जांच कराएंगे। आगे बढ़ने से पहले हम सुन ही लेते हैं कि सपा के जो वरिष्ठ नेता हैं रामगोपाल यादव, उन्होंने क्या कहा।
पैरामिलिट्री फोर्सेस के तमाम जवान बेकार मार दिए गए वोट बढ़ाने के लिए, ये बातें मैं इस वक्त कहना नहीं चाहता, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस के सारे लोगों ने हमसे शिकायत की है, अधिकारियों ने तक, कि हम मांग करते रहे कि हमें हवाई जहाज से भेज दीजिए, क्योंकि जम्मू से या तो हवाई जहाज से जाते हैं या पहली में जैसे ही घुसते हैं वहाँ जो पड़ाव है वहाँ से बख्तरबंद गाड़ियों में जाते हैं। पहली बार ऐसा हुआ जब कोई चेकिंग नहीं थी जम्मू और श्रीनगर के बीच में।
तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने ये कहा कि कोई चेकिंग नहीं थी जम्मू और श्रीनगर के बीच में, जवानों ने ये गुजारिश की थी कि उन्हें हवाई सेवा दी जाए लेकिन उन्हें बस से भेजा गया। इस तरह के इल्ज़ामात वो लगा रहे थे। हालांकि कुछ और नेता ने, जैसा कि आपने शुरू में बात कही, ये बातें कहते रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि पुलवामा में जो चरमपंथी हमला हुआ था उसमें 40 से ज़्यादा जो CRPF के जवान मारे गए थे, उसके ठीक 12 दिनों के बाद यानी 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया था।
लेकिन इकबाल साहब, एक चीज बताएं कि एक हफ्ते तक कुछ शांति रही पुलवामा हमले के बाद, लेकिन कई तरह के दावे, और रामगोपाल यादव पहले नेता नहीं हैं विपक्ष के जिन्होंने ये सवाल उठाया। जैसा कि ये बताइए कि दोनों पक्ष जो हैं, विपक्ष और पक्ष जो है इस पूरे सवाल को एक तरह से राष्ट्रवाद से जोड़ के कहीं ना कहीं, तो ये पूरा जो नैरेटिव है किस तरह से बनता हुआ।
नहीं, देखिए, ये एक हमें ये भी कहना होगा कि चाहे वो कांग्रेस के अध्यक्ष हों राहुल गांधी या दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने भी जैसे ही पुलवामा की घटना हुई थी उसकी निंदा की थी, और जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुआ था तो उन्होंने भारत की वायुसेना को बधाई दी थी और उन्होंने ये कहा था कि हमें भारत की वायुसेना पर गर्व है। लेकिन राजनीतिक रूप से वो सवाल जो हैं वो पुलवामा की घटना और उसके बाद जब 12 दिनों के बाद 26 फरवरी को एयर स्ट्राइक भारत ने किया, उसके बाद से राजनीतिक प्रश्न तो होते ही रहे थे। लेकिन विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि हम सरकार से सवाल जवाब कर रहे हैं, हम भारतीय वायु सेना की काबिलियत पर और उन पर हम किसी तरह का सवाल नहीं कह रहे हैं। जो सत्ता पक्ष है वो जाहिर है वो इस तरह से चीज़ों को पेश करने की कोशिश कर रही है कि जो विपक्ष है वो सेना की काबिलियत पर ही सवाल उठा रही है।
तो ये एक तरह से राजनीति का मुद्दा है और जाहिर है कि जब चुनाव करीब है तो रहेगा ही। इकबाल साहब, स्टूडियो में आने के लिए और सारी जानकारी हमसे शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज होली का दिन है तो जाहिर है बात होली की भी होगी। होली भारत के जिन हिस्सों में बहुत ज़ोर शोर से मनाई जाती है उनमें से एक है बिहार, बल्कि वहाँ के हिंदुओं के जो त्यौहार हैं सबसे बड़े उनमें से होली एक है। तो जाहिर है जैसी ही होली करीब आती है जगह जगह लोगों की टोलियाँ ढोल मंजीरे के साथ जमा होती दिखने लगती हैं और ढोलक की धाप पर होली के गीत फिजा में बिखरने लगते हैं। ऐसे गीतों की परंपरा मैथिली भाषा में है तो भोजपुरी में भी इसका रंग किसी तरह से फीका नहीं है। इन्हीं गीतों के इर्द गिर्द बुनी है एक रिपोर्ट सीटू तिवारी ने।
होली नजदीक आते ही बिहार के भोजपुर इलाके के ग्रामीण हिस्सों में ये स्वर गूंजने लगता है। बच्चे होलिका दहन या सम्मत जलाने के लिए टोली बनाकर घर घर जाते हैं और कहते हैं, ए यजमानिन, तुम्हारे घर के दरवाजे सोने के हैं, 5 गोईठा या कंडे दे दो।
जा चनी
फागुन का ये महीना उम्र के किसी भी बंधन से परे होता है। यही वजह है कि क्या बच्चे, क्या जवान और क्या बुजुर्ग, सबको मस्ती के रंग में डुबोने वाले गीत हमारी परंपरा में मौजूद हैं। ये गीत सुनिए। बसंत पंचमी के दिन अबीर गुलाल लगाकर औपचारिक तौर पर होली गायन की शुरुआत होती है। बसंत पंचमी से लेकर होलिका दहन तक जो गीत गाए जाते हैं उसे फाग कहा जाता है। फागुन के महीने के खत्म होने के साथ ही फाग विदा लेता है। होलिका दहन के बाद अगले दिन जब लोग रंग गुलाल खेलते हैं उस दिन चैत का महीना शुरू होता है, जिसमें चैता गाने की परंपरा है। होली के इस पारंपरिक गीत में 1857 की लड़ाई के नायक बाबू कुंवर सिंह का जिक्र है, लेकिन फिर भी जब कभी भोजपुरी के होली गीतों की बात आती है तो उसमें पसरी अश्लीलता बहस के केंद्र में आ जाती है। जानकारों की माने तो बिहार के होली लोक गीतों में थोड़ी अश्लीलता परंपरा से है, लेकिन भोजपुरी गीतों की अश्लीलता को बाजार ने पीते चार दशकों में भुनाया है। बिहार मगही अकादमी के पूर्व अध्यक्ष उदय कुमार शर्मा कहते हैं,
भोजपुरी में ताली बजाने वाले श्रोता जो मांग किए उसी रूप में उस गीत को गाने वाले लोग ज्यादा आए कि मैथिली, हिंदी, बज्जिका, मगही क्षेत्र में भी गायक लोग हैं, वो भोजपुरी में ज्यादा गाते हैं, इसलिए कि वो मार्केट में आ गया।
वहीं गीतकार कुमार विरल इसकी व्याख्या दूसरे ढंग से करते हैं। उनके मुताबिक होली के दिन हमारी अंतर चेतना में बसी बातें गीतों के माध्यम से जुबान पर आ जाती हैं।
और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो भीतर जो अनकॉन्शियस में जो चीजें बैठी रहती हैं उसको निकाल देने का वो पर्व है।
हालांकि अश्लीलता को लेकर राय बटी हुई है। ममता ठाकुर मैथिली भाषा की लोक गायिका हैं, वो कहती हैं,
मिथिला में जो होली के गीत हमको मिलते हैं वे राम, कृष्ण या शिव से संबंधित गीत मिलते हैं। लोकगीत हमें मिलते हैं, उल्लास है, विरह है, श्रृंगार है, सब कुछ है, लेकिन भोजपुरी गीतों में जो परंपरा से हमें अश्लीलता दिखती है वैसा मिथिला में नहीं।
इन सबसे इतर होली के लोक गीतों में पलायन का स्वर प्रधान है। यही वजह है कि भोजपुरी के अश्लील कहे जाने वाले गीतों में प्रेमी के न आ पाने का जिक्र है। गांव जवार नाम से YouTube चैनल चला रहे और लोक कलाओं के संरक्षण पर काम कर रहे मोहम्मद अखलाक कहते हैं,
जो भी बिहार के अंचल के गीत है उन गीतों में पलायन की पीड़ा दिखती है, और ये लोक समाज की खूबसूरती भी है, विशेषता भी है कि वह अपने समय की बातों और समस्याओं को सहजता से अभिव्यक्त कर देता है।
बिहार के इन होली गीतों की खूबसूरती इनका समूह में गायन है। एक साथ सभी लोग जातीय धार्मिक भेदभाव मिटाकर होली गीत समूह में गाते हैं, बिना इस बात का फर्क किए कि कौन सुर में गाता है और कौन बेसुरा। सीतू तिवारी, BBC, पटना।
और अब वक्त है आपके खतों का, जिसमें भी होली का जिक्र है।
आपकी राय। नमस्कार, आपकी चिट्ठियों के साथ मैं हूं राजेश प्रियदर्शी और स्टूडियो में मेरे साथ हैं
सूर्यांशी पांडे। आप देख नहीं पा रहे हैं लेकिन हम दोनों ही आज होली के रंग में रंगे हैं। लेकिन ईमेल ये जो हम पहला ले रहे हैं ये एक शिकायत के रंग में रंगा है, और इनका नाम है कपिल बत्रा जो बहरीन से लिखते हैं कि आपने कई बार आप अपनी वेबसाइट पर जो लेख छापते हैं उसमें ये लिखते हैं कि इस लेख में व्यक्त विचार लेखक के निजी हैं, इसमें शामिल तथ्य और विचार BBC के नहीं हैं और BBC इसकी कोई जिम्मेदारी या जवाबदेही नहीं लेता है। यह किसी भी संस्थान को शायद कानूनी जिम्मेदारियों से तो बचाने में सहायक होगा परंतु क्या सार रूप में इसका ऐसा कहना सही है? मेरे विचार में अगर मैं या कोई भी श्रोता ऐसे कोई लेख लिखना चाहे, क्या आप उसको भी प्रकाशित करेंगे यही लिखकर, तो फिर इस कथन का नैतिक मूल्य क्या है?
बहुत अच्छी चिट्ठी है और ऐसी चिट्ठियाँ आती हैं तो अच्छा होता है कि बहुत सारे लोगों के मन में जो संदेह हैं उनको हम दूर कर सकें। देखिए, हम आपके विचार प्रकाशित नहीं लेकिन प्रसारित कर रहे हैं। हमने आपने जो अपने विचार बताए वो आपके निजी विचार हैं जिसको हम प्रसारित कर रहे हैं, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि ये नैतिक रूप से सही है या नहीं, ये सवाल आप पूछ रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, पूछना चाहिए। इसीलिए इस चिट्ठी को हमने सबसे पहले शामिल भी किया। इसकी वजह यह है कि एक तो कानूनी जिम्मेदारी की बात है, जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, उसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अलग अलग क्षेत्रों के लोग जिनका ताल्लुक अलग अलग तरह की विचारधाराओं से है, अलग अलग मतों से है, अलग अलग राजनीतिक दलों से है, उन सब की राय हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। वो हमारी राय नहीं है, ये उन दलों की या उन विचारधारा से जुड़े हुए लोगों की राय है। वो आप तक पहुंचनी चाहिए ताकि आप अपनी राय बना सकें, और हम अगर उसको अपनी राय की तरह पेश करें तो वो भी अनैतिक होगा, वो भी गलत होगा। इसलिए हम क्लियरली बहुत साफ शब्दों में ये लेबल करते हैं कि ये लेखक के विचार हैं, और इसीलिए हम बताते हैं कि वो नज़रिया है या ब्लॉग है या वो किस विधा में लिखा गया लेख है। वो कई बार हो सकता है कि व्यंग हो, जिसको आप गंभीरता से न लें, इसलिए हम उसके आगे व्यंग लिख देते हैं।
अगला जो ईमेल हम पढ़ने जा रहे हैं, इन्होंने डेब्यू किया है, नाम है इनका साहिल यादव, आजमगढ़ से लिखते हैं, और ये लिखते हैं कि सभी बीबीसी के जो जर्नलिस्ट है, रिपोर्टर्स हैं, उनको हैप्पी होली। और साथ ही साथ वो ये भी लिखते हैं कि प्रोग्राम जो ताना बाना इनको बेहद पसंद है, और ये रेहान फजल की विवेचना के मुरीद हैं।
बहुत शुक्रिया हमें चिट्ठी लिखने के लिए। ताना बाना सईद नकवी साहब हमारे लिए प्रस्तुत करते हैं, काफ़ी दिलचस्प अंदाज में वो बताते हैं भारत की मिली जुली संस्कृति के बारे में, भारत की जो बहुत सारी कहानियां हैं जो लोग नहीं जानते।
राजीव जी, यहाँ पर दो मेल आए हैं और दोनों ही ये बात लिख रहे हैं कि बीबीसी आजकल जो है वो निरपेक्ष होने की संभावना उसके अंदर कम दिखती है, और वो ये कह रहे हैं कि जो उनके ब्लॉग होते हैं वो मुस्लिम और कांग्रेस प्रेरित लगते हैं, और वो बीबीसी बचपन से सुनते आ रहे हैं लेकिन अब वो निष्पक्ष नहीं लग रहा है उन्हें बीबीसी। एक अनुराग पांडे ने लिखा है ये बात, और फिर दूसरे जो लखनऊ से लिखा है पंकज कुमार चौबे ने, जिन्होंने ये लिखा है कि अब बीजेपी से और या कांग्रेस समर्थक ज्यादा लगने लगा है बीबीसी।
ये एक बहुत बड़ी चुनौती है बीबीसी के लिए और हर निष्पक्ष पत्रकार के लिए कि वो जैसे ही सरकार की किसी नीति की किसी कदम की आलोचना करता है उसे तुरंत कांग्रेसी कह दिया जाता है। इतनी हड़बड़ी न करें, हम 70 साल से भारत में प्रसारण कर रहे हैं, बीबीसी का प्रसारण चल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की किसी नीति पर सवाल उठाना, उस पर कोई बहस करना, इसका ये मतलब नहीं है कि वो हिंदू विरोधी है या मुसलमानों की समर्थक है या कांग्रेस से प्रेरित है। इसका उद्देश्य शायद यही होता है कि सवाल और आलोचना बंद हो जाए, जो कि लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं होगा।
अब जो आखिरी खत भेजा है वो राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बिहार से भेजा है, जो ये लिखते हैं कि समाचार बुलेटिन दिनभर में 19 मार्च को शाम की सभा में एंगेला मर्कल को ब्रिटेन की चांसलर बताया गया, जबकि बीबीसी से ऐसी अपेक्षा नहीं होती।
इसका सीधा सीधा जवाब ये है कि ये गलती है और हमसे हुई है, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। इसी के साथ अब चलते चलते आपको पता बता दें, अगर आप हमें डाक से चिट्ठी भेजना चाहें तो हमारा पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003। और अगर आप हमें ईमेल भेजना चाहें तो हमारा पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
खतों का जवाब जिस जो आप सुन रहे थे उसमें ताना बाना का जिक्र था, और पिछले दिनों आप रूबरू हुए होंगे भारत की मिलीजुली तहजीब या संस्कृति से, जो ताना बाना के माध्यम से बीबीसी ख़ास तौर पर आपके लिए लेकर आ रहा है। इसे बीबीसी ने जाने माने पत्रकार और भारत की गंगा जमुनी संस्कृति को करीब से जानने वाले सईद नकवी साहब की मदद से तैयार किया है। आज होली का दिन है तो बात होली और उसकी झलकियों की उर्दू अदब में और बुल्ले शाह के गीतों में।
रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे।
होली है।
लियो भाई होली आई और मुझे इकबाल का वो एक शेर हमेशा याद आता है, लाजिम है दिल के पास रहे पासबाने अकल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे, यानी दिल के ऊपर अकल का पासबान चौकीदार रहे, लेकिन कभी कभी इसको एक दीवानगी में छोड़ दे। वो है होली का रंग जिसमें कि हम सुध बुध भूल नहीं जाते बल्कि बिल्कुल गोया आज़ाद हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं तमाम अपने बिहेवियोरल कंट्रोल जो है वो हम जानबूझ के छोड़ देते हैं। और फिर गाने गाता है हमारा नज़ीर अकबर आबादी, कहता है कि जब फागुन रंग झुमकते हों तब देख बहारें होली की, और डफ के शोर खटकते हों तब देख बहारें होली की, परियों के रंग दमकते हों तब देख बहारें खुम शीशा जाम छलकते हों तब देख बहारें होली की। लेकिन बुल्ले शाह के यहाँ होली यानी होली का एहतमाम, होली का एक तामझाम, उसके साथ साथ एक एक नमाज की सीरियसनेस, दोनों को उसने अमलगमेट कर दिया है।
होली खेलूंगी कह कह बिस्मिल्लाह,
होली खेलूंगी कह बिस्मिल्लाह, होली खेलूंगी कह बिस्मिल्लाह, नाम नबी की रतन चरखी बूंद बूंद पड़ती इल्ला लिल्ला, अलस्तु बी रब्बिकुम पीतम बोले सब सखियों ने घूंघट खोले, कुलो वल्लाहो यूं कर बोले ला इलाहा इल्लल्ला, होली खेलूंगी मैं कहे बिस्मिल्ला। अब बिस्मिल्ला पे सम आता है जाके। और हमारे हसरत मोहानी, हजरत मोहानी को तो छेड़छाड़, मुंह से छेड़ करत ननलाल लिए ठाड़े अबीर गुलाल, बीज गई जिनकी बरजोरी औरों पर रंग डाल डाल। अब देखिए, अब जनाब हजरत को शरारत सूझ रही है, हम हूं जो दिए लिपटाए के हसरत, हमने कहीं तुझे ए कृष्ण लिपटा लिया और अपनी छाती से लगा लिया, सारी ये छलबल निकाल, मैं तेरी ये सारी शरारतें जो हैं ये सब निकल जाएंगी, मैं सब इनको निचोड़ लूंगा। होली का रंग ही ऐसा था, हजरत निजामुद्दीन औलिया के यहाँ होली खेली जाती थी, टेसू के रंग लेके होली खेलते थे। लेकिन फिर होली के कई हमारे यहाँ यूपी में नशे भांग का भी बड़ा दौर दौरा था, ताकि अगर इनहिबिशंस कुछ रह जाएं, उन इनहिबिशंस से अपने आप को फ्री करने के लिए कभी कभी भांग, और जो पुराने धाकड़ भांग पीने वाले, अरे बाप रे बाप, भांग पिए तो अस पिए जस सावन भादव कीच, भांग पिए तो अस पिए जस सावन भादव कीच, लोग कहें के मर गए आप नशे के बीच सवेरे पीर चनेगी।
सोए गोदी का याद बलम तरसे रंग बरसे।
और एक बार फिर से मुख्य समाचार सुने भूमिका राय से।
बीबीसी समाचार। नीदरलैंड्स में सत्ताधारी मध्यपंथी गठबंधन सीनेट में अपना बहुमत खो सकता है। यहां 3 साल पहले गठित हुई एक कट्टरपंथी पार्टी ने चौंकाने वाली जीत हासिल की है। रूस और चीन के बीच बन रहे पहले रेलवे पुल को निर्माण कर्मियों ने जोड़ दिया है। 2000 मीटर लंबा ये पुल अमूर नदी पर बन रहा है। बुरुंडी में अपनी स्कूली किताब पर बनी राष्ट्रपति की तस्वीर पर लिखावट करने के आरोप में गिरफ्तार की गई 3 किशोरियों को जेल भेज दिया गया है। उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। बीबीसी समाचार।
तकनीकी पक्ष संभाला था कपिल देव सिंह ने। रेडियो पर अगली मुलाकात होगी सुबह 6:30 बजे। तब तक के लिए आपके साथ है bbchindi.com, और आप चाहें तो हमें फेसबुक पेज और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, खतों के लिखने का सिलसिला जारी रखिए। फैसल मोहम्मद अली को दें इजाज़त। शब खैर।